ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل. میل کچیل دور کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی 10th ذی الحج کو. اب جو لوگ حج پہ نہیں گئے ان کے لیے مے بھی یہ باتیں تھوڑی سی مشکل ان کو لگیں، اور جو جا چکے ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ 10 ذی الحج کو جب آپ اس کے بعد یعنی آپ نے قربانی کر لی، آپ نے یہ جمعرات کر لیے، تو اس کے بعد جب آپ اس کے بعد اپنا احرام کھولتے ہیں تو اب آپ احرام کی حالت میں ظاہر ہے نہ تو آپ خوشبو لگا سکتے تھے، نہ اپنے ناخن تراش سکتے تھے، نہ اپنا سر کے بال کٹوا سکتے تھے. تو اب الحمدللہ اب آپ اس چیز سے، جب آپ نے قربانی بھی کر لی، آپ نے سب کام اپنے کر لیے، اب آپ احرام سے باہر آئے ہیں، تو اب نہائیں دھوئیں، اپنے الجھے بالوں کو سلجھائیں اور خوشبو بھی لگائیں، اچھے کپڑے سلے ہوئے کپڑے پہنیں. مرد تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو وہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، تو اپنا یعنی میل کچیل دور کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی وہی ہے کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور اس کے بدن سے بو آتی ہو. یعنی وہ تو بیچارہ اتنا یعنی مشقت میں جو ہوتا ہے، وہ سارا دن چل چل کے کبھی کسی جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر آپ مزدلفہ سے جب آتے ہیں تو رات کو وہاں پہ آپ نے یعنی قیام کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ سوئے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی گرد و غبار اوپر ہوتا ہے، تو وہ بھی سڑکوں کے اوپر کھلے میدان کے اندر آپ یعنی رات گزارتے ہیں، تو اس سے انسان کے اوپر ظاہر ہے گرد و غبار ہوگا. پھر 10 تاریخ کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب آپ اس کے بعد اپنے سارے ارکان ادا کر لیے ہیں، قربانی کر لیا، تو اب حجامت بھی بنوائیں، ناخن بھی کٹوائیں، نہائیں دھوئیں، میل کچیل دور کریں، احرام کھول کے عام لباس میں اب آپ آ جائیں، تو احرام کی ساری پابندیاں اس وقت پھر آپ سے اٹھ جاتی ہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ بیوی کے ساتھ مل نہیں سکتا شوہر. اب اس کے لیے کیا ہے کہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لیتے، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، تو جب طواف افاضہ کر لیتے ہیں جو فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو پھر آپ ساری پابندیاں پھر اٹھ جائیں گی. تو اس لیے یہاں پہ آگے پھر آپ طواف کی بھی بات دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ابھی یہ کہا گیا کہ دور کر لیں اپنا میل کچیل. میل کچیل میں اب کیا آ گیا ہے کہ بڑے ہوئے جو بال ہیں آپ کے، بال بھی مڑوائیں گے، پھر ناخن بھی، جو زائد ناخن ہیں، اتنے دن سے ناخن اگر نہیں کاٹے، اب جو ہے نا ناخن بھی کاٹیں گے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ناخن کاٹنا یا مونچھیں تراشنا یا بغل کے بال نوچنا اور زیر ناف بال صاف کرنا، ان کو اس طرح سے موننا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کا حدیث میں ذکر ہے کہ یہ فطرت میں رکھی گئی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی تاکید کی گئی تھی، یعنی یہ ابھی سے نہیں، شروع دن سے انسانوں کے لیے صفائی ستھرائی کے لیے ایک ان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ چیزیں نہیں بڑھنی چاہیے، نہ ناخن، نہ زیر ناف بال، نہ بغلوں کے بال، اور نہ ہی مونچھیں آدمیوں کے لیے. اب آج کے وقت میں ہم اس چیز کو فیشن سمجھتے ہیں کہ ناخن بڑھائیں، اور اس چیز کے اندر ہم شاید ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ یہ نجاست ہے، یہ نجاست میں ہی شمار ہوتے ہیں نا. اسی لیے میل کچیل کو اپنے صاف کرنے کے اندر ناخن کا بھی وہ ہے کہ آپ ناخن بھی اپنے کاٹیں. تو آج ہم نے بالکل اپنے ساری یعنی بالکل الٹ کر لیے ہیں، اپنی فطرت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، جبکہ آج دیکھیں میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے جب آپ کچھ بھی کرنے لگے تو کہتے ہیں ہاتھوں کو دھو اور پھر کھاؤ، ہاتھوں کو دھو اور پھر یہ کام کرو. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جرمز آپ کے ہاتھوں کے تھرو آپ کے اندر جاتے ہیں، اور ہاتھوں میں سب سے زیادہ ناخن ہے ایسی جگہ جس میں جرمز جا کے سٹور ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. کیونکہ جب ناخن لمبے ہوتے ہیں تو ان کے اندر تک آپ صفائی نہیں کر سکتے. آپ کا ہاتھ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں پہ وہاں سے جو بھی جراثیم، آپ چاہے آپ اپنی نجاست صاف کر رہے ہیں یا اپنے بچے کو دھلا رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہاتھوں سے ہی کرنا ہے نا آپ نے کام، تو وہ جو جراثیم ہے وہ ناخنوں کے اندر جا کے یعنی وہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، آٹا گوندھتے ہیں اور کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ نجاست کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ سٹور ہوئے ہیں. لیکن اوپر سے ہم ان کے اوپر پالش لگا لیتے ہیں تاکہ بالکل ہی نہ نظر آئے. तो इसकी सफाई कौन कर सकता है? फिर अंदर जाके इनको वहां तक गलाजतें कौन निकाल सकता है? और 40 दिन से ऊपर तो आप ना अपने बाल बढ़ा सकते, ना अपने नाखून इस तरह कर सकते, उसके अंदर अंदर आपको इनको काटना होता है। हदीस कुदसी में फरमाया, मेरे घर के जायरीन को देखो, हर तरफ से प्रागंदा बाल यानी बिखरे बाल और गुबार आलूद लिबास में मलबूस चले आ रहे हैं। तो इंसान जब एहराम की हालत के अंदर होता है तो उस वक्त तो गुबार आलूद होता है, लेकिन उसके बाद एहराम से निकल आता है वो तो साफ पाक हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दूर कर लें अपना मैल कुचैल। ये कैसे दूर होगा? बाल मुड़वाने से और नाखून तराशने से और फिर सिले हुए कपड़े पहनने से, गुसल करके खुशबू लगाने से। तो ये एहराम की पाबंदियां फिर उससे उठ गईं। इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखें जो के हदीस में और जो सुन्नत इब्राहिमी है उस पे आ जाए। और सुन्नत इब्राहिमी यही है कि इन्हीं 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जो, 2 चीज़ें हैं जो बाहर से नज़र आती हैं, 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिबास के अंदर होती हैं, किसी को नहीं नज़र आती, ना किसी को पता है कि हम अंदर से अपनी क्या सफाई सुथराई रख रहे हैं। ये हम अपनी तहारत के लिए, देखें ताहिर बैती, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे घर को पाक कर दो, किसके लिए? इबादत गुजारों के लिए। अच्छा, अल्लाह का घर पाक साफ रखने की क्यों है कि वहाँ पे इबादत की जाएगी? तो वो जो बंदा इबादत करने वाला हो वो गंदा और वो हो तो फिर कैसी ये नापाक हो, तो ये कैसी बात होगी? फिर जगह पाक साफ रखनी है तो उस बंदे को जो इबादत कर रहा है उसको तो उससे भी ज़्यादा पाक साफ होना चाहिए। इबादत के लिए हमें अपने आप को भी पाक साफ करना है। अपनी इर्द-गिर्द की जगह तो बाद में आती है, हमारा जिस्म ही गंदा है और उसके अंदर निजासतें लगी हुई हैं और साथ ही आप उनको कैरी कर रहे हैं, जरासीम को भी, निजासत को भी। और कितना मर्जी आप साफ करने की कोशिश करें, इंसान नहीं कर सकता इन जो नाखूनों के अंदर गंदगी फंस चुकी होती है। इसी तरह जो बगल के बाल हैं या जेरे नाफ बाल हैं उनको भी मूंढना, सबके लिए, मर्दों और औरतों के लिए ये जरूरी है। उसके बाद फरमाया, वल यूफू नुजूरहुम, और पूरी करें अपनी नजरों को, अपनी नजर पूरी करें। नजर का माना क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम जिसको कहते हैं अपनी आम जुबान में मन्नत मानना, तो अपनी जो भी मन्नतें पूरी करें। अब यहां पे हज के साथ इसका क्या रिलेशनशिप आ गया मन्नत का? असल बात यह है कि जब इंसान जाता है ना ऐसी जगहों के ऊपर, तो वो हज वगैरह पे स्पेशली खास तौर पे जब जाता है तो इंसान जो कि एक इबादत के मूड में होता है तो कई दफ़ा वो ऐसी कई नज़रें मान लेता है, अब मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं ये करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, फिर मैं, यानी नज़र क्या चीज़ होती है? अल्लाह ताला ने उसको आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन आपने खुद ही अपने ऊपर उसको फ़र्ज़ कर लिया, आपने लाजिम कर लिया, अल्लाह से एक वादा कर लिया, तो ये एक वादे की तरह होता है, उसको पूरा करना ज़रूरी है। फिर वहाँ पे जाके उस इबादत को जो आपने, चाहे नफल पढ़ने की थी या सदका करने की थी या कोई भी जो भी आपने नज़र मानी थी, वो पहले तो नफल थी, आप चाहे तो करते चाहे तो नहीं करते, लेकिन जब आपने नज़र मान ली तो वो आपके जिम्मे लाजिम हो गई, वो अब आपने ज़रूरी पूरी करनी है। जैसे आप फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं इसी तरह फिर आपने उसको पूरा करना है। और वैसे भी अगर हज पे नहीं भी जा रहे हैं, आम जिंदगी में भी अव्वल तो सोच समझ के नज़र माना करें, ठीक है? अगर मान ली है तो फिर उसको पूरा करें। अब नज़र में भी कुछ शराइत है। एक बात यह कि जिस काम की आपने नज़र माननी है वो गुनाह का नहीं होना चाहिए। मसलन है कोई नज़र मान ले मैं ईद के दिन रोज़ा रखूंगी, तो ये चूंकि गुनाह है इसलिए ऐसी नज़र को तोड़ देना चाहिए, उसको नहीं पूरा करना चाहिए। और दूसरी इसके अंदर क्या शर्त है? जिस इबादत की नज़र माननी है वो इससे पहले फ़र्ज ना हो। मसलन कोई शख्स कहे कि मैंने हज की नज़र मानी हुई है, अब हज तो उसके ऊपर ऑलरेडी ही फ़र्ज़ था, तो अब नज़र मानने से क्या हो गया? तो पहले ही फ़र्ज़ था उसके ऊपर, तो जो फ़र्ज़ इबादत, मसलन मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगी ये मैंने नज़र मान ली, नहीं, ये तो पहले ही आपके ऊपर फ़र्ज़ है। नंबर 3 बात यह है कि जिस चीज़ की भी आपने नज़र मानी है वो आपकी मिल्कियत से ज़्यादा की ना हो। या वो चीज़ किसी और की मिल्कियत में ना हो। मसलन मेरे पास है 100 रुपया और मैं कहूँ मैंने नज़र मान लिया कि मैं 1,000 रुपये का सदका करूँगी, ये कैसे हो सकता है? आपके पास जब है ही नहीं तो उस चीज़ की आप क्यों नज़र मान रहे? या मैंने नज़र मान लिया कि वो चीज़ जो फलां के पास है ना वो मैं सदका करूँगी, अब वो तो आपकी मिल्कियत है ही नहीं, आपने कैसे उसकी नज़र मान ली? फिर नंबर 4 चीज़ ये कि जिस चीज़ की नज़र माननी है उसका करना नामुमकिन ना हो। मसला है कि आप कहें कि मैंने यानी 1 लाख नफल पढ़ूंगी आज, तो ये आप पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसी नजरें फिर नहीं माननी चाहिए। और नजर पूरी करना इतना जरूरी है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि मैंने जमाना जाहिलियत में एक रात मस्जिद हराम में इतकाफ करने की नज़र मानी थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नज़र पूरी करो। जमाना जाहिलियत में हालांकि उन्होंने मानी थी ये, लेकिन फिर भी आपने फरमाया उसको पूरी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इसकी ताकीद फरमाई, बुखारी की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो मेरे ज़माने में हैं, फिर वो लोग हैं जो उनके करीब हैं यानी जो उनके बाद वाले हैं, फिर वो लोग हैं जो उनके बाद वाले हैं, फिर इनके बाद एक ऐसी कौम आएगी जो नज़रें मानेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे, वो ख़यानत करेंगे और अमानतदारी नहीं करेंगे, वो शहादत देंगे और इनसे शहादत तलब नहीं की जाएगी और इनमें मोटापा ज़ाहिर होगा। ये बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, पता है? ऐसे लोग आने वाले हैं जो नज़रें ही पूरी नहीं किया करेंगे। अब नज़र को भी मजाक बना लिया, रोज़ मन्नत मान लेते हैं किसी चीज़ की, उसके बाद फिर और देखिए ऐसी भी नहीं मन्नत माननी चाहिए कि अल्लाह अगर ये हुआ तो फिर मैं ये करूँगी, क्योंकि क्या आप अल्लाह ताला को लालच दे सकते हैं? या अल्लाह ताला को ज़रूरत है कोई आपकी नवाफिल की या आपके रोज़ों की या आपके वक्त की या आपके सदक़े की? नहीं, बल्कि दिल की खुशी के साथ वो पूरा हो ना हो आप वो काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कोई वो तो नहीं है ना कि आप अल्लाह ताला माफ़ फरमाए नाउज़ु बिल्लाह कि आप किसी बच्चे को कहते हैं तुम ये करोगे ना तो फिर मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगी, तो आप वो इस लालच के अंदर वो कर ले काम, तो आपने अब उसको कैंडी दे दी, तो नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, क्या आप अल्लाह ताला के साथ इस तरह की शराइत रख रहे हैं, इस तरह की कंडीशंस रख रहे हैं कि तू ये करेगा तो फिर मैं ये करूंगी? तो कोई अल्लाह को चाहिए आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत है? नो। तो इसीलिए उलमा कहते हैं जब आप मन्नत मान ले ना, नज़र मान ले, तो आप ऐसा करें वो काम हो ना हो आप वो फिर भी करें जो आपने मन्नत मानी है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी ने नाफरमानी की, कोई गुनाह की नज़र मान ली है, कि मसलन कोई कह दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह की इताअत की नज़र मानी है वो अल्लाह की इताअत करे, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की नज़र मान ली है कि मैं ये नाफरमानी का काम करूंगा, तो वो फिर उसको ना पूरा करे, ठीक है? कई लोग कह देते हैं अब मैंने ये बस नज़र मान ली, मन्नत मान ली कि मैं तुमसे सारी ज़िंदगी बात नहीं करूंगा, तो ये इसको तोड़ दे। कोई आदमी कह दे कि मैंने ये नज़र मान ली कि मैं तुम्हें तलाक दे के रहूंगा, तो ये नहीं, ये गुनाह के कामों की है, ठीक है? और फिर जैसे मैंने आपसे कहा जिससे मुशक्कत हो, इतने आपको मुसीबत में डालने के कामों की नज़र इससे भी मना किया गया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा दे रहे थे, आपने देखा एक आदमी है धूप में खड़ा हुआ है, आपने इससे पूछा, इसके बारे में पूछा, सहाबा ने बताया कि इसने नज़र मानी हुई, ये खड़ा रहेगा और बैठेगा ही नहीं और साये में नहीं रहेगा, ना बात करेगा और रोज़ा ही रखेगा। आपने फरमाया ऐसे को कि बातें करे और साये में रहे और बैठे और अपना रोज़ा पूरा करे, ये बुखारी की हदीस है। जैसे कई लोग कहते हैं ना बस मैंने नज़र मान ली है मैं बस पैदल ही जाऊंगी हज पे, अब मैंने ये नज़र मान ली, यानी अपने आप को मुसीबत में डाल लेने वाली ना कि जिससे आप मुसीबत में पड़े, मैंने ये नज़र मान ली है कि अब मैं इस तरह से करके ये काम करूंगी, वो जो मुश्किल तरीका है ना उससे, कि मैं आप वहाँ की जो एक टांग पे वहाँ पे जाके खड़ी रहूंगी। अब देखें एक जैसे एक हदीस से भी हमें पता चलता है, अबू दाऊद की है ये, कि हज़रत उकबा की बहन ने ये नज़र मानी थी कि वो पैदल हज करेंगी, आपने फरमाया अल्लाह ताला इसकी इस नज़र से मुस्तगना है, यानी अल्लाह ताला गनी है इससे, वो बेनियाज है, उससे को कि सवार हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप आपको सवारी है, आप खामखा अपने आपको मुश्किल की नज़र मान रहे हैं कि मैं मुश्किल से करके ये काम करूंगी तो फिर इससे शायद अल्लाह खुश होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके पास कोई सहूलत है, आप कह रहे हैं नहीं मैं अपने आप को मुसीबतें कर करके वहां पे ऐसे पहुंचूंगी, मैं इस तरह से करूंगी, मैं फाके कर करके वहां पे पहुंचूंगी, ये सही नहीं है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के आप मालिक ना हो उस चीज़ की नज़र नहीं माननी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी में नज़र को पूरा करना सही नहीं है, और ना इस चीज़ की नज़र मानना जायज़ है जिसका इब्ने आदम मालिक नहीं है। इसी तरह अपने पूरे के पूरे माल के सदका करने की भी नहीं आप नज़र मान सकते। कि हज़रत अबू लुबाबा ने कहा था कि मेरी तौबा यही है कि मैं अपनी कौम के उस घर को छोड़ दूं जिसमें मैंने गुनाह किया था, और मैं अपने तमाम माल को अल्लाह के लिए सदका कर दूंगा। आपने फरमाया तुम्हारे लिए 1/3 माल को सदका करना ही काफ़ी है, पूरा नहीं करो। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ इंसान की ताकत में ना हो उसके फिर नज़र अगर मान ली है तो फिर क्या करें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने कोई नज़र मानी और उसको मुय्यन नहीं किया, इसका कफ़ारा कसम का कफ़ारा, और जिसने गुनाह की नज़र मानी इसका कफ़ारा भी कसम का कफ़ारा है, और जिसने ऐसे काम की नज़र मानी जिसकी वो ताकत नहीं रखता इसका कफ़ारा भी कसम का कफ़ारा है, और जिसने ऐसी इबादत की नज़र मानी जिसकी वो ताकत रखता है वो उस नज़र को पूरा करे। और फिर अगर आपके जो है जो फौतशुदगान है उसमें से किसी ने कोई नज़र मानी हो तो उस नज़र को भी पूरा करें, उसके वारिसों को पूरा करना चाहिए। जैसे कि किसी ने नज़र मानी हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहन से कहा कि उन्होंने आके पूछा कि मेरी बहन ने ये नज़र मानी थी तो क्या मैं इसको पूरा करूं, वो फौत हो गई। आपने फरमाया अगर उस पर कर्ज़ होता तो क्या तुम उसके कर्ज़ को अदा करती, उसने कहा हाँ। यानी एक शख्स था उसने आके कहा था कि मेरी बहन ने हज करने की नज़र मानी थी और वो फौत हो चुकी है, तो उसने कहा हाँ। आपने फरमाया फिर अल्लाह का कर्ज़ अदा करो, वो अदा किए जाने के ज़्यादा मुस्तहिक है, मे बी उसने नफली हज की मन्नत मानी हो ना। तो इसलिए देखें अव्वल तो नज़र सोच समझ के माने, मन्नतें मानना दिन रात बस इसी तरह करते रहना ये सही नहीं है, सोच समझ के करें। अगर की है तो फिर अब वो काम हो या ना हो आप उसको करें, फिर भी आप अपनी नज़र को पूरा करें। वल यत तवाफू, वल यत तवाफू, और चाहिए कि वो तवाफ़ करें। किस घर का? बिल बैतिल अतीक, सिर्फ कदीम घर का ही कर सकते हैं। चाहिए कि उस दिन, यानी ये 10 दिल हज की बात हो रही है ना, तो उस दिन फिर वो तवाफ़ भी करें। ये मैंने आपको बताया तवाफ़े ज़्यारत की बात है, तवाफ़े अफादा भी जिसको कहते हैं, और ये हज का एक रुकन है, इसके बगैर हज पूरा नहीं होता। तो इसलिए फिर उनको चाहिए कि अपना हज पूरा कर लें। ज़ालिका, ये यानी ये सारी बातें थीं, ये सारी मनासिक हज थे। वह मैं युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, और जो कोई ताज़ीम करेगा अल्लाह की हुरमतों की। हुरमत क्या होती है? हुरमत वो चीज़ है जो मुहतरम है, जो मुअज़्ज़ज़ बनाई हुई है, जिनकी ताज़ीम ज़रूरी है, जिनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है, उसको कहते हैं हुरमात। ये हुरमात हैं, ये हुरमतें हैं। कौन सी हैं हुरमतें? अभी तो हज की बात हो रही है ना, तो जो हज के मनासिक अगर आप लें तो ये सारी अल्लाह की हुरमतें हैं। इसी तरह कई जगहें भी ताज़ीम वाली हैं ना, वो भी हुरमत है। अब ऐसी चीज़ों की या ऐसी जगहों की या ऐसे दिनों की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ये हुरुमात अल्लाह हैं। तो जो इनकी ताज़ीम करेगा फ़हुवा खैरुन लहू इंदा रब्बिही, तो वह बेहतर है उसके अपने लिए ही, उसके रब के नज़दीक। यानी ये उसके अपने लिए ही, अल्लाह के हाँ उसका अपना ही मर्तबा बुलंद होगा, अल्लाह के हाँ उसके अपने लिए ही बेहतर है। जो अल्लाह ताला की जिन चीज़ों को अल्लाह ने रिस्पेक्टफुल बनाया है कि इनकी रिस्पेक्ट की जाए, चाहे वो हज की अरकान है, चाहे वो हज की इबादत है, चाहे वो जो जगह है जहाँ पे इबादत की जाती है उनकी इज्जत हो, ये चाहे वो अल्लाह ताला की जो भी अल्लाह ने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया, हज के अलावा भी अगर बात करें, एक तो हज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख लेना, और एक हज के अलावा भी अल्लाह ताला ने जो भी आप पे चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जिन कामों से भी अल्लाह ताला ने आपको यानी करने को कहा है, अमल करने को कहा है, तो उन अहकाम के बजा लाने में सुस्ती नहीं करनी, उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये अल्लाह का हुक्म है, उनको आगे बढ़ बढ़ के करना है, और सिर्फ रिस्पेक्ट में यानी एक वो नहीं है रिस्पेक्ट के आपने बस मान लिया, बल्कि उनको करो, उनको पर अमल करो। और दूसरे ये भी बात है, रिस्पेक्ट में ये भी आ जाता है उनका मजाक ना उड़ाओ, इनको रिस्पेक्ट दो। और फिर रिस्पेक्ट में ये भी आ जाता है, ताजीम में ये भी आ जाता है कि जिस तरह से वो बताई गई हैं उसी तरह अदा करो। अगर आपको तरीका सुन्नत का तो कुछ है और आप किसी और तरह उनको अदा कर रहे हैं तो ये तो रिस्पेक्ट ना हुई ना। इसका मतलब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो उतना अहम समझा नहीं है, आप अपने ही तरीकों को ज़्यादा समझ रहे हैं, तो ये तो डिसरिस्पेक्ट करना हुआ ना। तो आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए ना, रिस्पेक्ट क्या होती है? जब आप किसी को की बात को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के हुक्म को रिस्पेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? एज इट इज़ उसको करते हैं पूरा। तो मसलन अब आप हज पे जाते हैं, अब आप बहुत आसानियों के आदी हैं, यहाँ पे एसी में बैठते हैं दिन भर, आप ना ज़्यादा आपको वॉक की आदत है, ना कोई मुश्किल बर्दाश्त करने की, ना रश बर्दाश्त करने की, ना आपको कोई मतलब है तंग तंग कमरे में रहने की, ना आपको बहुत हजूम की। तो वहाँ पे जाके अब आपके सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं, कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, कहीं और कहीं मुशक्क़त हो जाती है, तो वहाँ पे जाके क्रेज़ी हो जाना, इन चीज़ों को बुरा भला कहना, इस चीज़ को कहना इसका फ़ायदा क्या है, तंग आना वहाँ पे, डिसरिस्पेक्ट शो करना, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है क्या? क्योंकि वहाँ पे तो मुशक्क़त ही मुशक्क़त है ना, मुश्किल तो आएगी, मेहनत तो है, ऐसे ही तो नहीं अजर है, वहाँ पे तो मुशक्क़त होगी। लेकिन वहाँ पे जाके कई लोग फिर एक तो इस तरह से घबरा के और फिर फजूल बातें करने लगते हैं, कई लोग वैसे मजाक उड़ाने लगते हैं, वापस आके कई लतीफ़े बना लेते हैं उन उन अरकान के, ख़ास तौर पे जमरात का, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लतीफ़ा बना लेते हैं, शैतान को कंकर मारने का, और इस तरह उसके ऊपर हंसते हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब ही बातें बनाते रहते हैं। तो देखें ये चीज़ें ऐसी हैं, ये अरकान हज हैं, अरकान हज की भी रिस्पेक्ट है, अल्लाह ताला के तमाम हुक्मों की एक रिस्पेक्ट है, अल्लाह की जन्नत की भी रिस्पेक्ट है, अल्लाह ताला की जो जहन्नम है उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी लतीफ़े बना लेना, यानी ये सारे अल्लाह ताला की रुमात हैं, इनको मानना, इनको सीरियस लेना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करना, ये सब रिस्पेक्ट करने में आता है। लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल होना ये सब कुछ है कि आप मसलन है वहाँ पे जाके, वहाँ पे कहा गया कि आप मीना में आधी नमाज़ पढ़ें, कसर नमाज करें, आपकी डिसरिस्पेक्ट किया, आपने कहा नहीं मैं तो पूरी ही पढ़नी है, मैं तो पूरी ही पढ़ूंगी, अब आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं कि मैं बड़ा नेकी का काम कर रही हूँ, हालांकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आप हट गए, अपना तरीका ईजाद कर लिया, नहीं जी हमें फलां इमाम ने बताया और मैं यहाँ पे फारिग ही हूँ, मैं कौन सा इतना कुछ काम कर रही हूँ तो अब मैं पूरी करूँगी। तो ये बातें हैं डिसरिस्पेक्ट की, तो ताजीम करो हुरमात की। तो सबसे रिस्पेक्टफुल तरीका क्या है? जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसे ही आप करें। फिर इसी तरह अब हालिया रश की वजह से वहां पे 7th ज़िलहज को ही मीना पहुंचा देते हैं, 8th ज़िलहज को जो मीना की रात है उसमें अरफात पहुंचा देते हैं, 8th को ही रात को अरफात पहुंचा दिया, हालांकि रहना उस वक्त मीना में था। फिर मुजदलिफा की रात भी फिर इसी तरह सड़क पे ही गुजर गई, फिर तवाफ़े इफादा भी लेट जाके कर रहे हैं, बिल्कुल लेट लेट हो रहे हैं, तो हज का हमने नक्शा ही बदल दिया ना। तो तमाम अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, हुरमतें हैं, ये उनकी ताजीम ज़रूरी है। तो मनासिक हज भी उसी तरह अदा करने चाहिए जैसे कि सुन्नत तरीका है, और हज के दौरान की पाबंदियों को तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे अब लोग आपस में लड़ पड़ते हैं वहाँ जाके, खाना सही नहीं मिल रहा उस पर लड़ रहे हैं, चोरियाँ कर लेते हैं, ज़ुबान दराजियाँ करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब अपने ज़रा ज़रा सी चीज़ों का तो क्वेश्चन बहुत करेंगे, हाय कंघी कर ली, मेरा बाल ना टूट जाइए ना, अब ज़ुबान को भी तो कंट्रोल करें ना, उसको भी तो मना किया गया है। तो अल्लाह की हुरमतों की जो ताजीम करता है ना उसके अपने लिए बेहतर है। वा उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम, और तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए चौपाए मगर जो पढ़े जा चुके हैं तुम पर। कौन से पढ़े जा चुके हैं आज तक, पढ़े हैं आपने कोई? उनके अलावा सारे ही हलाल हैं। कोई पढ़े हैं आपने? याद है सूरह मायदा में, सूरह मायदा में पढ़ चुके हैं ना, दम, खून है ना, और जिस पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, और जो गिर के मरा हो, चोट लग के मरा हो, मुर्दार, बहुत हमने उसकी डिटेल और पूरी लिस्ट पढ़ी थी ना, तो उनके अलावा सारे चौपाए जो हैं वो हलाल हैं। तो इसी तरह सुअर का गोश्त और फिर बहीमा, साहिबा, वसीला, जिनके बारे में जो बुतों के नाम पे उन्होंने छोड़ दिया हुआ था वो भी हराम है, तो जिनको उन्होंने हराम किया हुआ था, तो उनके अलावा सब हलाल हैं। फजतनिबुर रिज्स मिनल अवसान, बस बचो गंदगी से, बुतों की गंदगी से बचो, यानी बुत परस्ती से दूर रहो, इज्तनाब करो, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ना करो, क्योंकि वहां पे तो काबे में बुत भी रखे हुए थे ना उस जमाने में, तो बुत को अपने घर से भी निकालो, इस काबे से भी निकालो, और जिसने अपने दिलों में बुत लगा रखे हैं ना उनको जगह दी हुई है, तो बुतों को क्या कहा, गंदगी से बचो बुतों की। यही मैं अभी आपको जो बात कह रही थी कि ये गंदगी है, ये गंदगी के काम है, ये बुत परस्ती जो है ना, शिर्क को अल्लाह ताला ने गंद का ढेर कहा है, निजासत कहा है। तो जिन्होंने बुत परस्ती ना सही शिर्क की और किस्में निकाल रखी हैं वो सब गंदगी के काम है। आस्थानों पे जाके चढ़ावे चढ़ाना, वहाँ पे दुआएं करना, कब्रों पे खड़े होकर उनको अपने मालिक समझना, अपनी राजिक समझना, अपनी कुछ भी हाजत रवा समझना, कुछ चीज़ देने का उनको इख्तियार समझना कि इनके पास ये इख्तियार है कि ये हमें कुछ दे सकते हैं, वहाँ जाके कुछ भी नजरो नियाज करना, ये गंदगी का काम है, रिच्स है, बाज आ जाओ इससे, ये तुम्हारी नेकियों को खा जाएगा, ये वो गुनाह है जो माफ नहीं होना, ये माफी के काबिल नहीं है, ये माफी नहीं होना अगर इंसान तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया। बाकी गुनाह अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, तो बचो इनसे। और देखिए आज जो ऐसे काम करने वाले हैं, हमें उनके कभी काम ऐसे गंदे लगते हैं कि रिच्स हैं ये, अख नकाहत कराहत आती है उनसे, कभी कराहत आई जब आप यानी अपनी इनकी फिल्मों में और इनके ड्रामों में और इनके और जगहों पे इनके देखते हैं आप काम, यानी लाइव तो शायद नहीं देखते हो आप, लेकिन अगर आप फिल्मों ड्रामों के अंदर इनके ये काम देखते हैं कि ये अपने वो उनके सामने खड़े होकर ये काम कर रहे हैं, तो आपको घिन महसूस होती है, कराहत आती है आपको? जब कोई घिन का सीन आता है वैसे गंदगी का, कोई ऐसी गंदी चीज़ दिखा दे तो एकदम इंसान का फौरन कहता है कि मतलब उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, लेकिन क्या इससे भी हमें कराहत महसूस होती है, या हम बड़े शौक से देखते हैं तजस्सुस से, अच्छा क्या कर रहे हैं इनके, किस तरह के ये काम होते हैं ज़रा देखें तो सही, वाह भाई बड़ा रौनक मेला है। तौहीद इसका मतलब दिल में आई ही नहीं जब तक ये सारे काम देख के इंसान को कराहत नहीं महसूस हो, फिर कैसे हम इनको आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, हमारी हीरोइन है, हमारी फलां है, अगर हमें इनके ये कामों से कोई कराहत महसूस नहीं होती, हमें हमें कैसे हम इनको आइडियलाइज कर सकते हैं अगर हमें इनके काम ये अच्छे लगते हैं, कराहत नहीं सॉरी अच्छे लगते हैं अगर हमें इनके ये काम, हम कैसे अपने आप को तौहीद वाले कहते हैं फिर, जब हम देख के और उसके बाद फिर आराम से बैठे रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अजान सुन के तो अजान आ जाए तो हम टीवी का चैनल चेंज कर दें, लेकिन इस तरह के काम हो रहे हो तो हम आराम से बैठ के देखते रहें, और हमें जब पता हो कि हम इसके अंदर वो इस तरह के सीन जरूर घुसाएंगे, लेकिन हम फिर भी आराम से बैठे उन सीन्स को बर्दाश्त करें, हमें गंदगी महसूस ही ना हो, कैसी तौहीद है फिर ये दिलों में? अल्लाह ताला इसको नजासत कहते हैं, हम देखकर उसको गवारा कर रहे हैं, नजासत को देख के कैसा टेस्ट हो गया हमारा। वजतनी वो कौल जूर, और कौल जूर से बचो, झूठी बात करने से बचो, झूठी बात जिसमें कोई ट्विस्टिंग हो, जिसमें आप यानी गैर अहम को अहम बना बना के पेश करें, और ख़ास तौर पे जब हम किसी के सामने कोई वाक्या पेश करते हैं तो एक पूरे वाक्य में से जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसको आगे कर देते हैं, और जिसको हम समझते हैं कि नहीं ये नहीं बतानी चाहिए उसको गोल कर जाते हैं। ये झूठ है। जो झूठ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? खिलाफ हकीकत बात, उसको झूठ कहते हैं। हेरा फेरी वाली बात, इधर की उधर, उधर की इधर, ये मुनाफ़िकत की पहली अलामत है, झूठ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया था, हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले। हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। अब देखिए हंसाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, हंसाने के लिए भी झूठ नहीं जायज़, तो फिर और किसी चीज़ में कैसे जायज़ हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह क्या है? एक तो सबसे पहले शिर्क है, शिर्क बड़े गुनाहों में से है। और उसके बाद आपने फरमाया था कि झूठ, झूठी बात और झूठी गवाही, झूठ झूठी बात, झूठ और झूठी बात, इतनी दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कराम कहते हैं कि हमने कहा अब आप बस करें, अब आप बस करें। यानी ये इतनी बुरी चीज़ है कि जिसकी बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरार की, इतनी दफ़ा कहा झूठ झूठी बात, झूठ और झूठी बात, लेकिन देखें कितनी दफ़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर झूठ तो ऐसे ही शामिल हो गया जैसे हमारा खाना पीना। और अगर हम झूठ को नहीं छोड़ते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़े गुनाहों में से बताया, वैसे हम अपने आप को कहते हैं हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने झूठ नहीं अभी तक छोड़ा, हमारी ज़िंदगी से झूठ निकला ही नहीं अभी तक, और फिर भी हम अपने आप को सोचते हैं कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हमने नफली रोज़े भी रख लिए, हमने हज भी कर लिया, हमने ये कर लिया, अब तो हम ठीक हैं, लेकिन झूठ ही नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक आप एक गुनाहे कबीरा में पड़े हैं, ये बड़े गुनाहों में से है। तो सबसे पहला बड़ा गुनाह आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा क्या फरमाया? वालदैन की नाफरमानी करना। और तीसरा क्या फरमाया? झूठी गवाही, झूठी बात, कौल ज़ूर, बार बार इसको फरमाते गए। तो अगर अभी तक ये एहतमाम नहीं हुआ, ये अपने साथ वादा नहीं हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो अब वादा कर लें। कितनी दफ़ा आप कुरान पाक में आ चुका है ना ये बात, तो फिर तो मुनाफिक हैं हम अगर अभी तक हमसे झूठ ही नहीं निकला। सहाबा कराम झूठ को जानते ही नहीं थे, झूठ है क्या चीज़? कहते हम नहीं, हमें नहीं पता था झूठ क्या होता है, झूठ बोला ही नहीं था कभी किसी ने, झूठ मुनाफिक बोलते थे, झूठ मुनाफिक की निशानियों में से भी है ना, झूठ बोलता है वो। अच्छा एक बात और यहाँ पे हुरुमात के हवाले से कहूँ कि हुरमतें, जैसे कि जैसे मैंने बताया है कि हुरमात हैं, हर एक उसकी जगह की भी है, दिनों की भी है इज़्ज़त, इसी तरह इबादात की भी इज़्ज़त है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे जो ये इनका ज़िक्र किया मवेशियों का, कि जो तुम्हारे लिए हलाल है, और उसके बाद बुतों की निजासत से, तो अरब में पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, लकड़ी की, लोहे सोने और चांदी के बनाए हुए मुजस्मों की पूजा किया करते थे, और नसारा जो था वो सलीब को नसब करके उसकी तज़ीम करते थे। तो अदी बिन हातिम, क्योंकि पहले वो क्रिश्चियन हुआ करते थे, तो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे गले में सोने की सलीब लटकी हुई थी। आपने फरमाया ए अदी, इस बुत को अपने गले से उतार फेंको। सोचें आप ज़रा, इतना सा भी गवारा नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये क्योंकि उनका सिंबल है, ये हमारा सिंबल नहीं है, ये उनकी एक ताज़ीम की चीज़ है, इसको गले में लटकाना इसकी ताज़ीम है। तो इतनी चीज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी इसकी। और कहाँ ये कि हम अपने घरों के अंदर क्रिसमस ट्री भी ला के रख लें और उनकी और चीज़ें भी ला के रख लें, और कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे ही तो है। तो जो उनके काम है वो उनके साथ रहने दें। आपके पास इस्लाम के शायर हैं, इस्लाम के तरीके हैं, इस्लाम की निशानियां और सिंबल्स हैं, जो उनके सिंबल्स हैं उनको छोड़ दें। आगे फिर शायर अल्लाह की भी बात आ रही है, हुनफा लिल्लाह या गैर मुशरिकीना भी, हुनफा यकसू होकर अल्लाह के लिए, गैर मुशरिकीना भी, ना शिरक करने वाले साथ इसके, यानी हुनफा बन जाओ, यकसू बन जाओ अल्लाह की इबादत करने के लिए। एक तो हज के लिए भी आप समझ सकते हैं, हज में तो आपको और भी ज़्यादा यकसुई मिलती है। देखें आप अपना घर बार बच्चे कारोबार काम ग्रोसरियाँ घर के और जो छोटे मोटे काम हैं और जितने भी आपके धंधे हैं सब से कट ऑफ होके आप सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस होते हैं। तो शिर्क ना करने वाले, पहले कह दिया सारे बातिल रास्ते छोड़ के एक अल्लाह के हो जाओ, हनीफ हो जाओ, फिर दोबारा कहा गैरा मुशरिकीना भी, उसके साथ शिर्क ना करना। हालांकि हनीफ में ही ये चीज आ गई कि शिर्क नहीं करना, लेकिन फिर से कहा शिर्क नहीं करना तुमने। और जिसने शिर्क कर लिया तो वो कैसा हो गया, उसकी एग्जाम्पल कैसी है। अब जिसके अंदर अदना सा भी शिर्क का जर्रा भी हो, वो अपने आप को इसके अंदर देख ले कि वह मैं युशरिक बिल्लाही, जो अल्लाह के साथ शरीक करता है तो उसकी मिसाल कैसी है, उसकी एग्जाम्पल कैसी है, उसके साथ क्या है। फका अन्नमा खर्रा मिनस समाई, तो ऐसे है जैसे वो आसमान से गिर पड़ा। अस्तग़फिरुल्लाह, अगर कोई बिल्डिंग से किसी को धक्का दे दे और वो किसी बिल्डिंग से गिर जाए, 70-80 मंजिला बिल्डिंग से कोई गिर जाए, क्या हाल हो उसका। हाँ, और कितना गजबनाक होगा वो उसके ऊपर जिसने उसको धक्का मारा। क्या उसकी कोई एक भी चीज़ हड्डी सलामत मिलेगी, या उसका क्या हाल होगा जब वो नीचे गिरेगा। ये तो 70-80 मंजिला इमारत की बात है, बिल्डिंग की बात है, अगर कोई आसमान से नीचे गिर जाए, सोचें ये जो जहाज़ों के अंदर जाते हैं कई का पैराशूट नहीं खुलता, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो वो नीचे गिर जाते हैं आके, उसके बाद उनका हाल क्या होता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अभी आसमान में नहीं है वो, अभी किसी जहाज़ में ही है जो कुछ कुछ 1,000 फुट पे होगा या कुछ है। आसमान से अगर किसी को ज़मीन पे गिरा दिया जाए और फिर उसके फतख्तफुहु तैरू, तो उचक लें उसको परिंदे, औ तहवी बिहि रीहु, या फेंक देती है उसको हवा, फी मकानिन सहीक, एक दूर की जगह में, उसका हाल क्या होता है। परिंदे उसको उचक के नोच लें, उसकी बोटी बोटी कर दें, या उसको हवाएं उड़ा के इतनी दूर, ऐसी आंधी चले ऐसी हवा चले उठा के पटखे उसको दूर जाके किसी जगह, उसका हाल क्या होगा। शिर्क का ये हाल है, शिर्क से इंसान का ये हाल हो जाता है। क्यों, आसमान से गिरने वाला किस तरह, आसमान से देखो अल्लाह ने इसको कितनी बुलंदी दी, इसको इंसान बनाया, इसको क्या बनाया, आसान तकवीम, सारी मखलूक में अशरफुल मखलूकात बनाया, सब में ऊपर, और ये जाके अपने से भी नीचों को या अपने बराबर वालों के सामने जब झुकता है तो इसने अपने आप को इतना गिरा दिया, इतना नीचा कर दिया, असफल असाफिलीन हो गया, नीचों से भी नीचा। जब कोई किसी बुत के सामने जाके झुकता है तो इंसान, तुझे अल्लाह ने इतना ऊंचा मर्तबा दिया, तू कभी किसी सांप के आगे झुक रहा है, कभी किसी चूहे के आगे झुक रहा है, कभी किसी बुत के आगे झुक रहा है जो पत्थर का बना हुआ है, मट्टी का बना हुआ है, उसके आगे झुक रहा है, कभी किसी दरख्त के आगे झुक रहा है, कभी किसी अपने जैसे इंसान के आगे झुक रहा है। तो इसका मतलब तूने ये साबित किया कि तू इनसे भी नीचा है, तो वो कितने नीचे होंगे, तू तो उनसे भी नीचे गिर गया। तो इसकी मिसाल ऐसी, और इसको इससे सिंबलाइज किया गया, इससे ताबीर किया गया कि जैसे कोई आसमान से नीचे गिरा, और सोचें कि जो आसमान से गिर गया वो हलाकत से तो कभी नहीं बच सकता ना, इसी तरह जो शिर्क करने वाला है उसके आमाल कितने ही प्यारे क्यों ना हो, कितने ही आपको अच्छे लगे, हाय ये बहुत अच्छा काम करती है, ये सदका कितना करती है, ये यतीमों का ख्याल रखती है, इसने अपनी सारी ज़िंदगी इन कामों में गुजार दी, इसका क्या बनेगा। तो जिसने शिर्क किया है उसके सारे नेक आमाल, उनको नेक आमाल कह ही नहीं सकते क्योंकि उसके सारे आमाल जाया, वो हलाकत से बच ही नहीं सकता, उसके कोई अमल उसको बचा ही नहीं सकता। और बीच में उसको किसने पकड़ लिया? अत्तईर ने। तईर क्या है? तईर है शयातीन, शैतानों ने पकड़ लिया। वो बड़ी जल्दी शैतानों का शिकार हो जाता है। फिर जो शिर्क करने वाला ना, शैतान उसको अपने रास्ते पर ले जाता है। शैतान पकड़ लेते हैं उसको रास्ते में ही। शिर्क के रास्ते पे चलोगे, शैतानों को के फंदे में फंस जाओगे। क्योंकि जाहिर है, जो शिर्क करने वाला है उसको कुछ और तो पता नहीं है। उसको जो शैतान जिधर ले जाएंगे उधर ही चल पड़ेगा। और फिर तहवी भी रीहू क्या है? उसकी ख्वाहिश नफ्स, ख्वाहिश नफ्स भी उसको ऊपर आके गालिब हो जाती है, उसको कहीं दूर ही फेंक देती है। जाहिर है, वो अपनी ख्वाहिश का बंदा बन जाता है ना। फिर जो एक अल्लाह को नहीं मानता, कभी किसी पत्थर के आगे झुक रहा है, कभी किसी के आगे, वो पत्थर उसको क्या बताएगा कैसे जिंदगी गुजारो, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना है? वो फिर किसका बंदा बन जाता है? अपनी ख्वाहिश का। जो दिल में आता है वो करता है। और इसीलिए उसको ये बड़ा आसान लगता है कि पत्थर के आगे जाके झुक जाता हूँ और उसके बाद करता अपनी मर्जी। मेरे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। इस्लाम में आऊंगा तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। हम तो नहीं रिस्ट्रिक्शंस सह सकते। बाज़ लोग इस वजह से ही नहीं आते कि इन बुतों के आगे झुकते हैं, ये तो हमें कुछ कहते ही नहीं करने को। जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, लेकिन अल्लाह ने वो जो अंदर हमारे रख दिया ना, किसी ना किसी के आगे झुकने की जो एक तलब रख दी है, तो इंसान कहीं ना कहीं जाके झुकेगा ही। और अगर वो अल्लाह के आगे नहीं झुकता तो फिर किसी ना किसी के आगे झुकेगा। किसी ना किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी उसमें चर्च में जाएगा, कहीं ना कहीं, कि कभी सलीब के आगे झुकेगा तो कभी बुत के आगे झुकेगा, नहीं तो अपने नफ्स के ही आगे झुकेगा। असल में इसका झुकाव किस तरफ होता है? अपने नफ्स के आगे, अपने दिल की मानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? क्या हक है अल्लाह का बंदों पे? अल्लाह ताला का कोई हक है हम पे, ये बताएं? हम तो बहुत हक जताते हैं ना कि हमारा हक ये है कि हमें ये किया जाए और ये हमें खिलाया जाए और ये हमें बुलाया जाए और ये हमें दिया जाए, ये तो मेरा हक है। हम अपना हक तो जानते हैं, अल्लाह का कोई हक है हमारे ऊपर? है। सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह का हक बंदों पे यही है कि वो सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ये अल्लाह का हक है हम पे कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और फिर जब इंसान ऐसा करता है, तो आपने फरमाया, ए मुआज, जानते हो बंदों का फिर अल्लाह पर क्या हक है? कि अगर वो इसी तरह करें, यानी सिर्फ उसकी इबादत करें, शिर्क ना करें, तो अल्लाह ताला इन्हें अजाब ना दे, इन्हें अल्लाह फिर उस दिन के अजाब से इनको बचा लेगा। तो जिसने शिर्क कर लिया वो हलाकत में पड़ गया, हलाक हो गया। इसलिए शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। अगर शिर्क कर गए, ये सारा हमारा किया धरा, नमाजें, रोजे, हज, जकातें, सदके, किसी के काम आना, किसी की किफालत करना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, ये सब, वालदेन की फरमा बरदारी करना, ये सब जाया हो जाएगा अगर शिर्क कर लिया तो। इसलिए शिर्क से बचो। शिर्क नहीं माफ होना, अल्लाह ने नहीं माफ करना। क्यों फिर केयरफुल नहीं होते? क्यों ऐसी चीजों के पास भी ना जाओ जहां से शिर्क का कहीं शुबा भी हो जाएगा, यहां पे शिर्क है, उससे दूर भागो। आप उसमें जा जाके पढ़ते हो, वही जो गंदगी के पास से गुजरेगा उसके ऊपर छींटे पड़ ही जाएंगे। अगर चलो ये कहो कि नहीं, ये तो पता नहीं क्या है, वहाबी हो गए और हमने इनकी नहीं सुननी, और उनकी, खुदा के लिए अगर उनकी नहीं सुननी, कम से कम इतना तो करो कि इस चीज में अगर शक भी पड़ गया है, क्यों नहीं उसको छोड़ देते? क्यों वो काम हमें इतने प्यारे लगते हैं? ये शैतान ही तो है उन कामों की तरफ बार बार लेकर जाता है, और जो काम ऑथेंटिक है, हदीस से मालूम है, कुरान से मालूम है, उनकी तरफ नहीं लेकर आता। सारे कामों को छोड़ के क्या वही काम हमें अच्छे लगते हैं जिनमें हमें शक है? चलो किसी फिरके की भी ना हम सुने, हम कुछ भी ना माने, हम कम से कम ये तो देख सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर शिर्क का शुबा आ गया। जिस दूध में पेशाब का आपको शुबा हो जाए, इसमें पेशाब के कतरे गिर गए थे, पियेंगे उसको? शुबे वाली चीज को तो इंसान छोड़ देता है। अगर शुबा भी हो गया कि इसमें शिर्क हो सकता है, क्यों नहीं छोड़ देते उसको? लेकिन हम अपनी हलाकत का सामान खुद करते हैं कि जब हम ऐसी चीजों के पास जाते हैं, वो काम करते हैं जिनका पता है कि इसमें शिर्क हो सकता है। चलो नहीं, किसी की ना मानो, कहीं तो सुना होगा ये शिर्क है, इसमें शिर्क का शुबा तो हो गया, क्या पता आखिरत में जाऊं तो वहां पे ये शिर्क ही निकल आया तो क्या होगा। नहीं, ये काम मैंने नहीं करना। पक्के तौहीद वाले क्यों नहीं बन जाते? तो जिसने शिर्क कर लिया उसकी तो ये हालत है, उसके बाद बताएं उसकी कोई बचत हो सकती है? खुद ही बताएं। और ऐसे इंसान के लिए आसमानों के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। आसमानों के दरवाजे ऐसी रूहों के लिए नहीं खुलते जो शिर्क करके दुनिया से गए हैं, उनकी रूहों के लिए आसमान के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। इसीलिए ये कहा गया ना कि जिस जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है तो फिर वो उसको फरिश्ते जो हैं उसकी रूह को आसमान से पटक के फेंकते नीचे, ठीक है, आसमान से उठा के फेंकते नीचे। उसके लिए आसमान के दरवाजे ही नहीं खुलते, तो आसमान से जो फेंक दिया जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा? जालिका, ये बात, ये हकीकत है, बात यही है। वमन युअज्जिम शाइर अल्लाही, जो कोई ताजीम करेगा, अब फिर ताजीम की बात आई है, पहले भी आई ना हुरमात की बात, तो फिर से ताजीम की बात आई है। जो भी सिंबल्स हैं, अल्लाह के शायर हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, जो इनकी इज्जत करेगा, इनको रिस्पेक्ट देगा, फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, तो ये उसके दिल के तकवे की अलामत है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा ना, वही इनकी रिस्पेक्ट करेगा, इनकी इज्जत करेगा। जो भी दीन के रिचुअल्स हैं, जो भी दीन की निशानियां हैं, जो भी ये सब जगह हैं, या ये कुर्बानी के जानवर हैं, अब यहाँ कुर्बानी है, ये भी शायर अल्लाह में से है। ये भी देखें, आपको कुर्बानी का सुनते ही क्या याद आता है? अल्लाह की याद आती है ना, तो फिर ये शायर अल्लाह में से है कुर्बानी करना भी। लेकिन स्टिल कई लोग ऐसे हैं वो आज कहते हैं कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, अगर हम इसकी जगह किसी की शादी करवा दें, किसी को तालीम दिलवा दें, किसी यतीम की किफालत करवा दें, किसी का घर बनवा दें, अब गोश्त की क्या ज़रूरत है? इतना कुर्बानियाँ तो इतनी होती हैं, गोश्त इतना ज़ाया होता है, सब गोश्त खाते ही हैं, हमें कुर्बानी से क्या फ़ायदा? और हम कुर्बानी के पैसों से ये क्यों ना कर दें? तो ये शायर अल्लाह की ताज़ीम नहीं है। जब आप लंबी चौड़ी दावतें करते हैं, जब लंबे चौड़े यानी कपड़ों पे, जेवरों पे बेदरे खर्च करते हैं, शादियों पे अंधा लुटाते हैं, उस वक्त हमें कभी किसी का घर बनवाने की याद नहीं आती। तब हमें कभी नहीं आता कि फलां यतीम की किफालत करनी है, फलां यतीम खाने में दे दूं, फलां बच्ची की शादी करा दूं। लेकिन जब कुर्बानी करने लगते हैं ना, तो देखो कैसा शैतान आता है कि फिर सारे काम याद आने लगते हैं। हालांकि इस दिन में अल्लाह ताला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल उस दिन अल्लाह ताला को कुर्बानी करना है इंसान की तरफ से। तो ये सारे काम आप ज़रूर करें, लेकिन कुर्बानी करना ज़रूरी है। फिर इसी तरह आप देखें, जब एहराम की आप पाबंदियों को तोड़ते हैं या वहाँ जाके ऐसे कुछ काम करते हैं जो मना है, तो ये भी शायर अल्लाह को डिसरिस्पेक्ट करना है। तो ये जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा ना, वो नहीं कभी ये काम करेगा। और ये अभी बता दिया ना अल्लाह ताला ने कि ये उसके अपने लिए बेहतर है। तो अगर कुर्बानी को लें तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोटी कुर्बानियां किया करो, क्योंकि क्यामत के दिन ये तुम्हारी पुल सिरात पर सवारियां होंगी, ये सवारी बनेंगी। और हम कुर्बानी की भी को गैर अहम समझते हैं, इसको समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेकार है, क्या ज़रूरत है, मुसलमानों को भी क्या ज़रूरत है, सा एक ही दिन में सारे कुर्बानियाँ करना शुरू जाते हैं, इससे बेहतर तो ये है कि ये कर लें, उससे बेहतर तो वो है, आप 10 तरह के फ़लसफ़े सुनेंगे। तो ये डिसरिस्पेक्ट करना है। इसी तरह और भी आप देख लें, जो भी किसी मुसलमान की अलामत है, उसका सिंबल है, जिससे पता चलता है ये मुसलमान है, ये इस्लाम पे चलने वाला है, जिसे अल्लाह याद आ जाए, वो सब ही शायर अल्लाह है। और उनको सबको रिस्पेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे रमज़ान का महीना है तो वो महीना, लेकिन रमज़ान का नाम लेते ही आपको क्या याद आ जाता है? इसी तरह मैदान अरफात, अरफात का नाम ले, या कोई काबे का नाम ले, या कोई मस्जिद का नाम ले, तो आपको क्या याद आता है? फौरन अल्लाह की याद आ जाती ना, फौरन किसी मुसलमान का याद आता है। इसी तरह ईद है, ईद को भी, ईद को याद करते ही क्या आता है? मुसलमान, इस्लाम, ये याद आता है। भाई हम कहते हैं बहुत बोरिंग है, बहुत बेकार, ऐसे ही, इस पर तो कोई मज़ा ही नहीं है। इसी तरह अगर नमाज का नाम लें, या अजान का नाम ले या कुरान का नाम ले, आपको इससे क्या याद आ रहा है? या दाढ़ी का नाम ले या हिजाब का नाम ले, तो आपको इससे क्या याद आ रहा है? शायर अल्लाह। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, सिंबल्स हैं, इन सब को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन स्टिल हम कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, कभी हम हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, कभी हम टखनों से ऊंची शलवार का मजाक उड़ाते हैं, कभी हाथ से खाना खाने का मजाक उड़ाते हैं। यानी जो सुन्नतें हैं वो भी देख के हमें सुन्नत ही याद आती है ना, इन चीज़ों का हम मजाक करते हैं। ये वही लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अल्लाह ताला से डरने वाले जो हैं वो ही इनकी ये काम करेंगे, बाकी कोई नहीं ये करता। और जो ये करेगा उसके अंदर तकवा है। अगर हमने चेक करना है हमारे अंदर कितना तकवा डेवलप हुआ है, तो चेक करें कि हम कितनी तअज़ीम करते हैं शायर अल्लाह की, और कितनी दफ़ा इन चीज़ों का मजाक करते हैं और नॉन सीरियसली इनको लेते हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं शायर अल्लाह में, सब वही चीज़ें आ जाती हैं जिससे आप एक मुसलमान और एक काफिर का फ़र्क आपको पता चलता है, जो सिंबल स्पेसिफिक इस्लाम के हैं। दीज आर इस्लामिक सिंबल्स हैं। तो हम गैर मुस्लिमों के सिंबल्स को तो रिस्पेक्ट दें, और अपने सिंबल को जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट करें, तो ये इसका मतलब है कि हमारे दिल में तकवा नहीं है। लकुम फ़ीहा मुनाफ़िउ इला अजल मुसम्मा सुम्मा महल्लुहा इला अल-बैत अल-अतीक। अब फिर कुर्बानी के जानवरों की ही बात आ गई, उनके पहले से उनकी बात चल रही थी ना, तो बीच में कोई नसीहत की बात आती है, फिर उसके बाद फिर वही बात आती है कि तुम्हारे लिए इसमें कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे किसके? जो शायर से अगर मुराद यहाँ पे कुर्बानी के जानवर लिए जाए ना, तो इनमें फायदे हैं, कुर्बानी के जानवर भी शायर हैं, तो उनकी ताज़ीम फिर कैसे होगी? क्या फिर मोटे ताज़े जानवर लेंगे, खूबसूरत जानवर लेंगे, महंगे जानवर लेंगे? जो मतलब आप देखें, हज़रत उमर ने एक दफ़ा एक ऊंट हदी के लिए, कुर्बानी के लिए अपने साथ लिया था, और उनको इस ऊंट को खरीदने के लिए 300 दीनार की ऑफर हुई। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस ऊंट को बेच दूं और इस रकम से और कई ऊंट खरीद लूं, तो आपने मना फरमाया, बल्कि आपने फरमाया कि इसको कुर्बानी के लिए अपने साथ ले जाओ, इसी ऊंट को लेके जाओ, महंगा जानवर। हम इस मामले में फिर बहुत कंजूसी करते हैं कि पैसे कम से कम खर्च हों और बस कुर्बानी भी हो ही जाए, जहाँ से बकरा कम से कम में मिल रहा हो, तो फिर जाहिर है फिर वो उतना ही दुबला पतला होगा और छोटा होगा। कपड़े बनवाने में हम कहते हैं बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन कुर्बानी में जो हमारी सवारी बनने वाली है पुल से रात पे, वो सबसे कमज़ोर चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे कैसे हैं? उनकी ऊन में फ़ायदा है, उनकी खाल में फ़ायदा है, उनके गोश्त में फ़ायदा है। इला अजल मुसम्मन, एक मुकर्रर वक्त तक। कब तक? यानी ज़िबा होने के वक्त तक। ज़िबा होने के वक्त तक तुम चाहो तो उनको से फ़ायदा ले सकते हो। मसलन है, कुछ लोग जानवर पालते हैं ना, सारा साल पालते हैं कि जो है हमने कुर्बानी के ऊपर ज़िबा करना है, तो उससे पहले वो उनका दूध भी पी सकते हैं, अगर वो ऊँट है तो उस पर सवारी भी कर सकते हैं, और वो कोई बच्चा देता है तो उससे उसके बच्चे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी उससे पहले पहले तक, वो कुर्बानी के दिन तक, उससे ज़िबा करने तक जो भी फ़ायदा उससे मिलता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर सुम्मा, फिर महिल्लुहा इलल बैत अल अतीक, फिर इसकी हलाल होने की जगह क्या होगी? बैत अल अतीक, तो पुराना घर। यानी ये नहीं मतलब कि बैतुल्ला में लाके उसको ज़िबा किया जाए, बल्कि मतलब क्या है? हरम की हदूद, हरम की हदूद में लाके आपने जानवर को ज़िबा करना है। इससे बाहर अगर ज़िबा किया तो सही नहीं है फिर हाजी के लिए ना। वलिकुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए, जालना मनसकन, हमने बनाए हैं तरीके। मनसक, मनसक से यहाँ पे तीन माने हैं मुराद। एक तो माना है कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी के तरीके हर उम्मत के लिए अल्लाह ने बनाए हैं। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानियाँ हो रही हैं, हाबील और काबील ने भी तो की थी ना कुर्बानी, और अल्लाह ताला ने इसी तरह बाकी उम्मतों के लिए भी कुर्बानी के तरीके बनाए बनाए बाद में आने वालियों के लिए भी। फिर उसके अलावा इसका माना क्या है? हज के मनासिक, मनासिक के हज जिनको हम कहते हैं ना, तरीके, हज करने के तरीके। तो ये भी अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों के लिए कुछ ना कुछ तरीके बनाए बताए, और उन्हीं के ऊपर उन्होंने हज किया, ठीक है। और तीसरा इसका माना क्या है, इबादत के आम तरीके, इबादत के जो भी तरीके हैं, हर उम्मत के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मगर एक चीज़ सब में कॉमन थी और वो थी तौहीद। कोई किसी तरह की, किसी की नमाज हो गई, किसी का रोज़ा किस वक्त खुल रहा है, किसी का किसी और वक्त खुल रहा है, किसी का किसी तरह से तरीका है इबादत का किसी तरह से, लेकिन सबके लिए इबादत के कुछ ना कुछ तरीके थे, सबके लिए कुर्बानी के कुछ ना कुछ तरीके थे, ठीक है। लियज़कुरु स्मल्लाही अला मा रज़क़हुम, ताकि वो जिक्र करें अल्लाह का उसके ऊपर जो उसने उनको रिस्क दिया। तो अगर यहाँ पे कुर्बानी के जानवर लिया जाए, तो अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीके रखे हैं, वो कुर्बानी हर उम्मत में राइज थी, कुर्बानी करते थे, ताकि उसके ऊपर अल्लाह का जिक्र करें। जो भी उसने उनको दिया है जानवरों में से, मवेशी जानवरों में से, यानी हर एक को यही था कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के नाम की होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें भी ये दोबारा पता चलता है कि कुर्बानी के जानवर के ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाए। अल्लाह ताला का नाम क्यों लेंगे? क्योंकि अल्लाह ने ये जानवर हमारे लिए पैदा किए हैं, अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं ये जानवर, उसने इनको पैदा किया, वो इनका मालिक है, लेकिन उसने हमारी मिल्कियत में दे दिया इनको हमारे फ़ायदे के लिए। अब आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अब फ़ायदा उठाने के बाद अब चाहिए क्या आपको कि जब इनसे इनको कुर्बान करने लगें तो अल्लाह के नाम पे कुर्बान करें। एक तरह से समझ लें कि आपके पास किसी की चीज़ है, अब आप उससे जो फ़ायदा उठाने लगे हैं तो आप उसकी इजाज़त ले रहे हैं कि मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा लूं। इजाज़त है उसकी तरफ से, लेकिन फिर भी आप एक जैसे कर्टसी से एक ही आप कर लेते हैं कई दफ़ा, तो आप इजाज़त लेते हैं ना कि मैं आपकी ये चीज़ यूज़ कर लूँ। तो आप इसी से समझें कि जब हम अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त हम अल्लाह ही का नाम लेंगे और एक तरह से उसका शुक्र अदा करेंगे जिसने आपको ये दिया, जिसने आपके काबू में इस जानवर को कर दिया। तो ये यहाँ से पता चला कि अल्लाह का नाम लेना शर्त है, ज़िबा करते वक्त इसका नाम लिए बगैर नहीं आप कर सकते हलाल इस जानवर को। तो ये शुक्र के तौर पे, जिसने दिया आखिर उसका शुक्र नहीं अदा करना। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तो इलाह तुम्हारा एक ही इलाह है, तो इसलिए ज़िबा करते वक्त भी उस एक का ही नाम लो, वो एक ही है। फ़लहू अस्लिमू व बशिरिल मुखबितीन, तो उसी के लिए मती और फरमा बरदार बन जाओ, उसके लिए ही झुक जाओ। जब जानवर को भी कुर्बान करो तो तब भी उसी के आगे यानी झुक जाओ, उसी का नाम लेके उसको कुर्बानी के लिए करो, उसी का नाम लेके उसको हलाल करो, और तुम खुद भी झुको उसके सामने। असल बात यह है कि जो बंदा ये बात समझ गया ना, उसको कुर्बानी की रूह पता चल गई। कुर्बानी करना सिर्फ ये नहीं है कि इंसान ये समझे कि हमने जानवर कुर्बान कर दिया बस बात खत्म हो, बात ये है आपका झुकना जरूरी है, आप कितना झुके। जब आप कुर्बानी करने लगे हैं तो आपने क्या साबित किया कि असल में मैं अपने रब की हर बात के आगे झुक गई, मुझे ये कुर्बान करने को कहा गया, मैंने ये जानवर कुर्बान किया, मुझे कल को मेरी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं अपनी भी कुर्बानी दूंगी, मुझे मेरी औलाद की कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं उनकी भी दूंगी। जैसे ये जानवर हमारे सामने झुके हुए खड़े होते हैं, हम ये देखें कि हमारी जिंदगियों में भी झुकाव आया या नहीं, अल्लाह की बात को सुन के हम कितना झुके हैं। तो उसके लिए झुक जाओ, ये समझ लो तुमको भी इसी तरह अल्लाह के आगे झुक जाना है, कुर्बानी भी उसी के लिए करो और तुम खुद भी झुको उसके आगे, तुम्हारा दिल झुक जाए उसके आगे। हम कुर्बानी बस एक बेरूह सी कुर्बानी करते हैं, जानवर लिटाया, गोश्त बांट दिया, बस वो हो गया काम, झुकाओ कितना आया उसके बाद हम में। और ऐसे जो झुकने वाले हैं, जो नरमी वाले हैं, तो उनको बशारत दे दो, व बशीरिल मुखबितीन, मुखबितीन को बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो। मुखबित कौन होता है? ये इसकी बड़ी प्यारी वजाहत है कि जगह जगह पे डिफरेंट इसके बारे में बातें आई हैं, मगर मुखबित वो है जो, जैसे मैंने आपको बताया, नशेबी जमीन जिसमें गड़ा पड़ जाए। तो यानी कोई पाँव रखे तो उसको पाँव को जगह मिल जाए, अंदर चला जाए उसका पाँव, यानी जो भी आए उसको उसका हक मिल जाए। कोई इसको हक दे ना दे, ये सबके हक देने वाला, जो खुशू करने वाला, आजिज हो गया है, गिर गया है अपने रब के सामने। नशेबी मकाम होता है ना नीचा, तो वो झुक चुका है अपने रब के आगे, गिर गया है, आजिज है, उसने अपने आप को हकीर कर लिया अपने रब के आगे। इसके बारे में ये भी कहा गया कि ये अल्लाह की याद में मगन लोग हैं, इखलास वाले लोग हैं, नर्म लोग हैं, जो किसी पर जुल्म नहीं करते, इन पे जुल्म हो तो बदला नहीं लेते, ये वो लोग हैं। अल्लाह की रजा के लिए अपनी मर्जी को छोड़ देने वाले लोग हैं, क्योंकि ये इस्लाम ले आए, ये फरमाबरदार हो गए, ये झुक गए। जो अच्छा ना करे उसके साथ भी अच्छा करने वाला, उसको कहते हैं मुखबित, जिसकी अपनी कोई मर्जी ना रहे। तो ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दें। मुखबित का माना, जैसे मैंने आपको कहा बताया, बुझाना भी होता है, तो बुझा दिया, जिसने अपने अपना जोश ठंडा कर लिया, ठंडा होके पड़ गया अपने रब के सामने, खुद को झुका दिया, उसके आगे गर्मा गर्मी नहीं दिखाई, टूट गया उसके आगे। अकोमोडेटिव इंसान, आजिज मिजाज इंसान, संग दिल नहीं होता ऐसा इंसान। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि इंसान बस अपने आप को बड़ा कमजोर जाहिर करे, मैं तो बड़ी आजिज हूं, मैं बड़ी मिसकीन बंदी हूं, नहीं, ये नहीं, इनकी कुछ खसूसियात है। फिर अल्लाह ताला के जिक्र से इनके दिल कांप उठते हैं। ये वो लोग हैं जो झुक जाने वाले लोग हैं कि आका के आगे, ये ऐसे होते हैं जैसे कोई गुलाम है, उसकी इताअत में जिंदगी गुजारते हैं, इनकी अपनी मर्जी नहीं होती। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा दे। तो कुर्बानी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। अल्लाह हमें ऐसे झुकने वाला बना दे कि हम उसके आगे झुकने वाले बने। हमें तो ये हाल है कि अगर कोई हमारा हक ना दे तो हम क्या, उसका कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हम हक देने को तैयार हो जाए, हम कड़े हो जाएं कि नहीं, मेरा हक नहीं भी दिया कोई नहीं, फिर मैं फिर भी इसका हक देती हूँ। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि कोई हमारे साथ सख्ती से भी बात करे तो हम नरम पड़ जाए, नरमी वाले। वैसे हम अपने आप को कहेंगे हम बड़े आजिज़ हैं, हम बड़े मिस्कीन हैं। तो यही तो है अपनी कुर्बानी करना, कि अपने आप को भी तो कुर्बान करो। आप तो जानवर को ही हर साल कुर्बान करते हो, अपने आप को कितनी दफा कुर्बान किया है कि अपनी अना को भी आप कुर्बान करो, अपनी मैं को भी आप मारो, अपनी मैं को भी कभी जिबा किया है? कुर्बानी जानवर की तो चलो साल में एक दफा करनी है, अपनी मैं को तो रोज मारना होगा। जब जब ये मैं सर उठाएगी आपने मारना है, इसको जिबा करना है, अपने अंदर को मार के दूसरे का हक देना, क्योंकि आप दूसरे को हक दे ही नहीं सकते अगर आपकी मैं आगे खड़ी हुई है। मैं, मेरा हक, किसी को भी नहीं आप हक दे सकते। हस्बैंड ने जरा सा कुछ किया, मैं क्यों उनका ये काम करूं, ये तो मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये तो मुझे पैसे देते नहीं, मैं इनको क्यों ख्याल रखूं। बहन भाइयों ने ऐसे किया, उसने मेरे साथ फलां वक्त में ऐसे बात की थी, मैं क्यों उसके साथ अब ये करूं, वो फलां वक्त में मुझे देखने आई थी जो मैं ये करूं, उसने नहीं है याद उसने क्या किया था, अब मैं इसके साथ ऐसा करूं, अब मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो ये लोग मुखबित नहीं बन सकते। मुखबित तो वो है जो खुद को झुका दे, जो ना दे वो उसको भी दे रहा है, जो माफ ना करे वो उसको भी माफ करता है, जिसने ज्यादती की उसको माफ कर देने वाला। और हम दुनिया की बाज मजबूरियों की वजह से तो मुखबित बन जाते हैं, कि जब हमारा कहीं इंटरेस्ट होता है या जब हमें और कोई चारा रह ही नहीं जाता, फिर तो मुखबित बन ही जाते हैं, खुद को गिरा ही लेते हैं। अल्लाह की खातिर कितने लोग हैं जो मुखबित बने, बात तो वो है, उसकी खातिर कितने मुखबित बनते हैं। इम्तिहान तो तब है, हम कहते हैं ना, हम अल्लाह की खातिर हर काम करते हैं, लेकिन ये बताओ कितनी दफा उसकी खातिर झुक गए आप, कितनी दफा उसकी खातिर जाने दिया, लेट गो किया, इग्नोर किया, बस किया, छोड़ दिया, माफ कर दिया। जिसने अच्छा ना भी किया उसके साथ भी अच्छा कर लिया आपने। हम तो टिट फॉर टैट चाहते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा उसको देंगे हम, मतलब जैसा जो करेगा हमारे साथ। हमारा तो मूड, हमारा तो अखलाक दूसरे के अखलाक पे डिपेंड करता है। जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा किया, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा किया, तो हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। हर एक के साथ हम वही सलूक करते हैं जैसा वो हमारे साथ करता है। तो मुखबित तो नहीं बन सकते फिर, और बशारा तो मुखबितीन के लिए। तो अपने अंदर नरमी पैदा करें, अपने अंदर झुकाव पैदा करें, और हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनने से नहीं मिलता, हक देने से मिलता है। आप हक दोगे तो आपको हक मिल जाएगा, लेकिन हर जगह हक छीनने की एक जंग चल रही है। यहां से भी हक छीन लूं, यहां वहां से भी अपना हक छीन लूं, वहां से भी अपना हक मांग लूं। तो ये कैसे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मर्जियों को छोड़ दिया, ये अल्लाह की याद में मगन रहने वाले हैं, इसीलिए ये मुतमईन लोग होते हैं, इनको परवाह नहीं है, मुतमईन है। इनके लिए बशारत है, इनको खुशखबरी दे दो। आज कोई भी किसी को हक नहीं देना चाहता है, हर एक चाहता है कि मुझे मेरा हक मिल जाए। हर एक को अपने हकूक बहुत याद है, दूसरे ने मेरे साथ क्या क्या किया वो इतना याद है, लेकिन मैंने क्या किया वो नहीं याद। हालांकि हमसे तो दूसरों की तो पूछ होनी ही नहीं है, हमसे तो हमारे ही अमलों की पूछ होनी है, हमने कितने हकूक अदा किए ये पूछ होनी है, और ये नहीं पूछ होनी उसने तुम्हारा कितना हक दिया था तुम बताओ। तो ये इंसान जब आजिज हो जाता है ना अपने रब के सामने, तो फिर उसकी हालत क्या होती है, मुखबित कैसा होता है? अगर हम अपने आप को ये चेक करना चाहें, हम मुखबित हैं भी या नहीं है, हम कहते तो रहते हैं मैं बड़ी आजीज मिस्कीन मिजाज बंदी हूँ, तो ये भी देखें कि मुखबित की सिफात क्या है। अल्लदीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, वो ऐसे लोग हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उसको याद किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके तो दिल खौफ और हैबत से, उनके दिल कांप उठते हैं, डर जाते हैं वो। जब कुरान पढ़ा जाता है, जब अल्लाह के जिक्र की मजलिसें होती हैं, हमारे दिलों पे कैसी कैफियत आ रही होती है बताएं? क्या हमारे दिल में कोई डर पैदा होता है अल्लाह का? हमारे दिल कांप उठते हैं, या हमारे दिल कहते हैं कि अरे बोरियत बड़ी हो रही है, फिर वही जिक्र लेके बैठ गई। उनके तो हाल ये होते हैं कि अल्लाह की अजमत से, उसके जलाल से कपकपी पैदा हो जाती है, उनके दिल डर जाते हैं, दिल कांप उठता है, वो फिर हर चीज को अल्लाह की मिल्कियत समझते हैं। दूसरे इंसान जैसे हर चीज को अपनी मिल्कियत समझते हैं ना, तो ये अल्लाह की मिल्कियत समझते हैं हर चीज को। और सहाबाए कराम देखें, उनकी मिसाल इस चीज के अंदर आपके सामने है कि हजरत उमर, उनके चेहरे पे दो सियाह लकीरें पड़ चुकी थी रोने की वजह से, इतना रोते थे डर की वजह से, इतना डरते थे अल्लाह की पकड़ से। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सख्त रो रहे थे। आपने फरमाया मुआज तुझे किस चीज़ ने रुलाया? फरमाया या रसूलल्लाह, दरवाजे पर एक जवान है, नहीफ बदन, साफ कपड़े और खूबसूरत चेहरे वाला, वो ऐसे रोता है जैसे माँ इकलौते बेटे पर रोती है, और आपके पास आना चाहता है। आपने फरमाया इसको ले आओ। वो हाजिर हुआ। आपने फरमाया ए जवान तू क्यों रोता है? उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी देखें हज़रत मुआज इनका रोना देख के रो पड़े थे। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैं गुनाहों की कश्ती पर सवार हूं, अगर मेरे बाज गुनाहों को भी तोला गया, सारे नहीं बाज गुनाहों को भी तोला गया, तो जहन्नुम में डाल दिया जाऊंगा। ये कहता हुआ वो रोता हुआ जंगल की तरफ निकल गया, रो रो के पुकारता रहा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। इनके आगे तो रब का जिक्र किया जाए ना, ये इस तरह खौफजदा हो जाया करते थे, ऐसे कांपते थे ये लोग। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए रो पड़े, उनकी बीवी भी रोने लगी। पूछा तुझे किस चीज़ ने रुलाया? बीवी ने कहा मैंने आपको रोते हुए देखा, मैं भी रो पड़ी। फरमाया मुझे तो अल्लाह ताला का ये कॉल याद आ गया है कि हर एक को पुल सिरात पे से गुजरना है, कुरान की ये आयत याद आ गई। वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पढ़ी थी ना हमने। तो अब मैं नहीं जानता कि मैं इसे निजात पाऊंगा या नहीं। उनको तो कुरान आता है सामने, अल्लाह की आयत आती है सामने, अल्लाह का जिक्र आता है सामने, रोने लग जाते हैं। कई लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज का कि इनको तो देखो हर वक्त इनको बस यही काम है, रोते रुलाते ही रहते हैं। तो उनके तो दिल कांप जाते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, अफमन हाजल हदीस ताजबून व तदहकून वला तबकून, क्या तुम इस बात के ऊपर ताज्जुब करते हो और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो? तो असहाबे सुफा यहां तक रोए कि इनके आंसू रुखसारों पर बह गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने की आवाज सुनी तो आप भी इनके साथ रोए। और इसके बाद आपने फरमाया वो आदमी जहन्नुम में नहीं दाखिल होगा जो अल्लाह के डर से रोया हो। तो ये तो इतना कांपने वाले थे, इतने इनके दिल खौफजदा होते थे। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये इसी सूरत की जब ये दो पहली आयतें जो थी ये उतरी थी गजवा बनी मुस्तलक की दौरान रात के वक्त नाजिल हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकार के सबको बुलवाया, ये आयतें पढ़ के सुनाई, ये जो पहली आयतें हैं आपने लास्ट टाइम अगर नहीं सुनी तो क़यामत के वाक़े के ऊपर। तो इनको सुन के लोग इतना रोए कि इस रात से ज्यादा रोने वाले कभी नहीं देखे गए। सुबह हुई तो लोगों ने घोड़ों से जीने नहीं उतारी, ना डेरे लगाए, ना हांडियां पकाई, कुछ लोग रोते रहे, कुछ गमगीन और परेशान सोच में बैठे रहे। ये आयतें सुन के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया था तुम्हें पता है ये कौन सा दिन होगा जो मैंने आपको पूरी बताई थी कि वो दिन होगा जब आदम अलैहि सलाम से कहा जाएगा अपनी औलाद में से जहन्नुम का हिस्सा निकालो। तो जब ये बातें उन्होंने सुनी इतनी उस सहाबा कराम पे ये सख्त पड़ी कि वो फिर दोबारा रोने लगे, फिर कहने लगे या रसूलल्लाह फिर कौन निजात पाएगा, कौन बचेगा? इनको तो इतने इनके दिल कांप उठते थे कि रो पड़ते थे ये अल्लाह का जिक्र सुन के। उनके अंदर यानी कोई तब्दीली आती थी, कोई हलचल मचती थी उनके अंदर, इसका मतलब वो अंदर तक हिल जाते थे जब भी आंखों से आंसू निकलते थे ना, क्योंकि दिल पे जाके असर करता था। वो बेहिस लोग थोड़ी थे, अल्लाह का नाम लिया जाता था फौरन झुक जाते थे, अना का मसला नहीं बनाते थे। हमारे सामने कोई अल्लाह का नाम ले और उसके बाद कोई कुरान की वायत तो सुना दे जरा, उसके बाद तो हम इतना माइंड करते हैं कि क्या मेरे लिए रखी हुई थी ये सुनाने को, मुझे सुना रही हो तुम ये। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और सबर करने वालों को ऊपर इसके जो पहुंचा उनको, ये लोग ऐसे हैं सबर करते हैं। तो इनकी अगली सिफत क्या है मुखबितीन की, जो मुसीबत जो मुश्किल आती है सबर से उसको बर्दाश्त करते हैं। वलमुकीम इस्सला, और कायम करने वाले नमाज, नमाज को उसकी वक्त की पाबंदी के साथ उसकी पूरी शरायत के साथ अदा करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो हमने उनको रिस्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। इसलिए कि वो जो बंदा अपने माल के ऊपर अपना हक ही नहीं समझता, वो समझता है ये मेरे रब का है, इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसका मालिक मेरा रब है, उसको देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और जो समझता है मेरा है मैं क्यों दूँ, उसको यकीनन खर्च करने में बहुत मुश्किल होगी। तो वो तो हर चीज पर मिल्कियत रब की समझते हैं, इसीलिए तो झुके हुए हैं ना हम अपने मालिक, अपनी चीजों के मालिक खुद बने में, इसलिए हम अकड़े में हैं, इसलिए हमारी अकड़ नहीं खत्म होती। तो देखें सबर जो है ना, सूरह शूरा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया जो सबर करे और माफ़ कर दे तो यकीनन बड़े हिम्मत के कामों में से है। जो सबर करेगा वही फिर झुक भी सकेगा, जो हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मसला बना लेगा और वो फिर सबर तो ना हुआ ना। तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, एक करेंगे तो दूसरी आपके अंदर आएगी। वलबुदना जाल ना है लकुम मिन शायरिल्लाह लकुम फीहा खैर, और हमने बनाया तुम्हारे लिए निशानियों में से बुदन को भी यानी कुर्बानी के जो ऊँट है उनको भी। फ़ज़कुरु इस्मल्लाह अलैहा सवाफ, तो फिर तुम क्या करो, अब मैंने जो इसके अंदर खैर है आपके लिए वो आपको बताई है कि आप किस तरह कुर्बानी करके भी एक एक बाल के बदले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर कयामत के दिन अपने सींगों, अपने खुरों, अपने बालों समेत आएंगे और खून के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के हाँ इसका एक मकाम होता है। तो तुम कुर्बानी खुश दिली से किया करो, इतना बड़ा मकाम है इसका, इसकी तो हर चीज तुलेगी, इसके बाल क्या, इसके खुर क्या, इसकी सींग क्या, सब चीजें तुलेंगी आपके अमालनामे में, इसका गोश्त, इससे पूरा पूरा जानवर तुलेगा, फिर सवारियां भी बनेगा, फिर एक एक बाल के बदले नेकी मिलेगी, और क्या चाहिए। तो इसमें इतनी खैर है, और ये भी शायर अल्लाह में से है, तो इनका मजाक ना बनाओ, इनको अनइम्पॉर्टेंट ना समझो, और इनके ऊपर अल्लाह का नाम लिया करो। इनको नहर किया जाता है ना, ऊँट को स्पेशली, के बात यहाँ पे हो रही है कि ज़िबा नहीं किया जाता, नहर किया जाता है। नहर कैसे होता है कि इनको खड़े करके यानी नहर किया जाता है। इसके ऊपर अल्लाह का नाम लो, उसके ऊपर भी देखें ये कहा गया अल्लाह का नाम ले के करो। अब जो लोग कहते हैं नहीं अल्लाह का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बाद में ही जब खाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तो बताएं फिर ये बार बार कहने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे, कि जब कुर्बानी करने लगो, जब ज़िबा करने लगो, जब नहर करने लगो, उससे पहले अल्लाह का नाम लो। तो फ़ज़कुर इस्मल्लाहि अलैहा, तो इस पर याद करो अल्लाह का नाम, और याद करो कैसे, सवाफ सफ बस्ता यानी इनको खड़ा करके। तो क्या किया जाता है कि इसको, इस जानवर को, ऊंट को खड़ा किया जाता है, और उसका लेफ्ट जो हाथ है, जो फुट है, फ्रंट फुट जो लेफ्ट है, उसको बेंड करके बांध दिया जाता है। फिर इसको नेजे से इसकी गर्दन के ऊपर वार किया जाता है, फिर ऐसे इसको नहर किया जाता है, और पिछले यानी तीन पाँव पे फिर वो खड़ा होता है। फ़ाइज़ा वजबत जुनूबुहा, फिर जब गिर जाएं उनके पहलू, यानी जब वो फिर उनकी यानी उनके अंदर रूह ना रहे, वो नीचे गिर जाएं, नीचे गिरेगा तभी ना जब उसको उसकी मौत वाकई हो जाएगी। अब कोई उसके अंदर जब हिस और हरकत ना रहे, कोई उसके अंदर जान ना रहे, कोई उसके अंदर रूह ना रहे, तब फकुलू मिन्हा, तो खाओ उसमें से, यानी आप उसके बाद उसको पका के आप खा सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी बोटियां करें, जैसे भी करें, लेकिन अगर उसके अंदर रूह है, जान है अभी, जैसे ज़िबा करते हैं या नहर करेंगे तो कुछ देर तक वो जानवर को ठंडा होने में लगता है, कुछ देर तक आप देखते हैं वो तड़पता है, तो उसको ठंडा होने में लगता है, चाहे आप मुर्गी को करें या कुछ करें, आप देखते हैं ना कुछ देर के लिए, अगर आपने अपने सामने देखा हो तो कुछ देर के लिए उसको जान निकलने में लगती, तो उस वक्त तक उसको काटना मना है। ये हदीस में है, जिस जानवर से इस हाल में गोश्त काटा जाए कि वो जिंदा हो, तो वो काटा हुआ गोश्त मुर्दा है, इसका मतलब है कि ये हलाल नहीं है, वो हराम हो गया, उससे आप नहीं खा सकते। तो हम देखते हैं कि स्पेशली ईद वगैरह पे, जहाँ पे कसाई बहुत जल्दी में होते हैं, तो वो एक एक को करते हैं, अभी वो है, अभी उसके अंदर से पूरी जान भी नहीं लग रही, अभी वो हिल ही रहा है, तो साथ साथ ही उसकी स्किन काटने शुरू जाते हैं। तो ऐसा जायज़ नहीं है, अगर ऐसा किया जाए तो फिर वो, कभी कभी आपने देखा होगा कि उसके बाद भी वो जो बोटियां होती हैं आपके पास लाती हैं, उसके अंदर ना हल्की सी हरकत, जरा सी, बिल्कुल अगर आप गौर करें तो, कभी ऐसा अगर आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हो कि हल्की सी ऐसे जुम्बिश सी होती है, हरकत सी होती है, मूवमेंट होती है, इसका मतलब उसके अंदर जान थी। स्पेशली आप तो यहाँ पे स्टोरों से लेकर आते हैं ना, लेकिन आपने कभी अपने मुल्कों के अंदर कुर्बानी का गोश्त आते हुए देखा हो तो फिर आप इस चीज़ का देख सकते हैं। इसी तरह मैंने मछली को देखा था, मतलब मैं अपने करीब के एक स्टोर पे गई थी, जहाँ पे वो चाइनीज़ स्टोर, जहाँ पे फ्रेश सामने आपके मछली निकाल के उसको करते हैं, तो ठीक है उसको तो ज़िबा चूँकि नहीं किया जाता, लेकिन क्या उसने किया कि उसके सर के ऊपर एक हथौड़ा मारा, और उसके बाद उसको, अभी वो तड़प ही रही है, तो उसको फ़ौरन फ़ौरन काटना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है, इसीलिए ये फरमाया कि छुरी को भी तेज कर लो ज़िबा करने से पहले, कि जानवर को तकलीफ ना हो, और इसीलिए इस तरह के तरीके बताए ज़िबा करने का या नहर करने का, इससे जानवर को तकलीफ नहीं होती। जैसे आप देखें कोई डॉक्टर है, कोई माहिर डॉक्टर है, अगर वो इंजेक्शन लगाए तो उस तरह से दर्द नहीं होता जैसे कोई अनाड़ी लगाए तो होता है ना, क्योंकि माहिर को पता है कि कहाँ लगाना है, किस जगह कितनी सुई लगानी है, किस जगह पे लगानी है, किससे इसको दर्द नहीं होगी। तो अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, अलीम है, वो जानता है कि जानवर को कहाँ चोट लगाएंगे तो तकलीफ नहीं होती उनको, उस तरीके से अगर किया जाए तो फिर जानवर के लिए तकलीफ दे नहीं है। अब ये देखें कि जब वो अभी तड़प रहा है उस वक्त कि उसके ऊपर उसको काटना शुरू कर दिया जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है, इस तरह से वो मुर्दार में शुमार हो जाएगा, आपके लिए हलाल नहीं रहेगा, तो ये एहतियात इंतहाई जरूरी है। फिर जब वो ठंडा हो जाए फिर तुम खाओ, वह अतईमू अल कायनी वल्मोअतर, फिर उसको भी खिलाओ जो कनात करने वाला है, यानी जो अपनी हाजत किसी को नहीं बयान करता। इसके अंदर आपके दोस्त साथी भी आ जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, और लोग भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो मुअतर है, यानी जो सवाल करने वाला है, सवाली कौन हो सकता है, कोई फकीर, मोहताज, भूखा, उनको भी खिलाओ। इसी से फिर लोग यहाँ पे तीन हिस्से करने का वो लेते हैं कि तीन हिस्से कर लिए जाए तो बेहतर है। कि देखिए उसमें काने भी आ गया, इसमें मुअतर भी आ गया, और उसमें आपका अपना भी हिस्सा हो गया। कज़ालिका सख़रना लकुम, इसी तरह अल्लाह ने इनको तुम्हारे काबू में दे दिया। देखो इतना बड़ा ऊंट होता है, इतनी बड़ी गाय होती है, लेकिन देखो कैसे तुम्हारे सामने झुके पड़े हैं, बिछे पड़े हैं। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे बस में कर दिया इनको। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। किसका? अपने रब का। तो कितनी दफ़ा हम खाते हुए शुक्र अदा करते हैं, इनके ऊपर सवारी करते हुए, या इनका दूध पीते हुए, या इनसे फ़ायदे दूसरे उठाते हैं, गोश्त खाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन शुक्र अदा करना नहीं याद रहता। तो अल्लाह ताला देखो, जिसने तुम्हें दिया है, जिसने इनको पैदा किया है, और फिर देखो तुम्हारे अंडर करती है, उसने अपनी चीज़ तुम्हें दे दी ताकि तुम फ़ायदा अपना उससे करो, तो देखो तुम्हें वही नहीं याद आए, वही ज़ात ना याद आए जिसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए इनको मुसख़्खर कर दिया। आप देखें, एक भी नहीं आपकी डिश पूरी होती अगर आप गोश्त ना करें, एक आपकी दावत नहीं हो सकती अगर गोश्त ना करें। कहीं हमारे मुल्कों में यहाँ पे तो नहीं होता, गोश्त का नागा हुआ करता था, तो गोश्त के नागे के दिन फिर वो को गोश्त नहीं बनाते थे, तो उससे पहले ही लाके रखना होता था, या उससे दिन कोई दावत नहीं कर सकता था कि गोश्त ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें इन चीज़ों का इसलिए नहीं एहसास रहता कि हमारे लिए रेडीली अवेलेबल है। तो जब ये इनको इस्तेमाल करो, इनको खाओ पियो, इससे मना नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो, उसको ना भूल जाओ जिसने ये दिया है। तो अगर हमें ना मिले तो तब अगर हमें शुक्र अदा करना याद आए, या तब हमें इसकी अहमियत पता चले, तो उसका क्या फ़ायदा। ला यनाल अल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ नहीं पहुंचता अल्लाह को इनका गोश्त और ना इनका खून। क्या करते थे कुरैश मक्का? कुर्बानियां करते थे, उसका गोश्त लाके वहां पे काबे पे मल जाते, खून काबे पे मल देते थे, और गोश्त वहां पे डाल देते थे कि ये जो है ना, ये अल्लाह ताला को रास्ते में हमने दे दिया। तो सहाबा कराम ने कहा कि हम तो इसके ज्यादा फिर हकदार हैं कि हम अल्लाह के राह में दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ने इसके खून और गोश्त को क्या करना है? अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। कुर्बानियों का गोश्त है वो तुम खा लेते हो, उसका खून है वो तुम्हारी जमीन पे पड़ जाता है, अल्लाह ताला को क्या देखना है? वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, लेकिन वो पहुंचता है उसको तक्वा जो तुम में है। किस नियत से तुम कर रहे हो, किस सोच के साथ तुम कर रहे हो, किस मकसद से तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कितना खलूस है, कुर्बान करते वक्त तुम क्या चीज को मद्देनजर रख रहे हो? क्या पैसों की बचत को, या क्या बस ऐसे ही बेदिली से, या क्या दिखावा कि हमने कितने बकरे कुर्बान किए, हमने कितने का बकरा खरीदा? तो असल बात तो अल्लाह ने ये नहीं देखना, उसको तुम्हारे से खून या गोश्त थोड़ी चाहिए, कि उसको पहुंचता थोड़ी है वहां पे। असल बात यह है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा नफ्स, उस वक्त तुम्हारे दिल का क्या हाल था? तुमने अपने नफ्स पे चोट खाई या नहीं? तुमने अपने आप को झुकाया या नहीं? तुमने अपनी कुर्बानी दी या नहीं? क्या तुम भी अपनी, जब आप बकरे को नीचे डालते हैं तो उस वक्त ये सोचा करें कि मैंने अपनी ख्वाहिशात पे भी कोई छुरी चलाई है? ये कुर्बानी जानवर की तो मैं दे रही हूं, एक अल्लाह के हुक्म के ऊपर मैंने एक जानवर की कुर्बानी दी, क्या अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं अपनी ख्वाहिश की भी इसी तरह कुर्बानी दूंगी? क्या मैं उसके ऊपर छुरी चलाऊंगी? अल्लाह का हुक्म होगा क्या मैं अपनी मर्जियों पर छुरी चलाऊंगी? अल्लाह का हुक्म हुआ तो क्या मैं अपनी अना के ऊपर छुरी चलाऊंगी? नहीं चला सकते क्या? अल्लाह के हुक्म के ऊपर अगर मैं जानवर पे छुरी चला सकती हूं, तो या अल्लाह मैं अपने दिल पे भी छुरी चला सकती हूँ तेरे हुक्म के ऊपर, मैं अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर सकती हूँ तेरे हुक्म पे, मेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं है अल्लाह, मैं अपनी मर्जियों को भी कुर्बान करूँगी तेरी खातिर, मेरा जो दिल चाहता है, मेरे दिल का चाहना कुछ नहीं है अल्लाह, मैं इसके ऊपर भी छुरी चलाऊंगी, इसको भी कुर्बान कर दूंगी तेरे लिए। ये है जो अल्लाह ताला देखता है। और फिर ये भी कि छुरी अगरचे जानवर पे है चल रही, लेकिन अल्लाह मेरा दिल तेरी मोहब्बत से ऐसे भरा हुआ है कि अल्लाह तेरा हुक्म आए ना तो मैं अपना माल, अपना ये प्यार से कमाया हुआ माल ये मैंने अपना घर, अपनी जान, अपनी जो भी तेरा हुक्म आए, तो अल्लाह मैं उसको भी, अपनी महबूब तरीन चीज को भी ज़िबा करने को तैयार हूं, उसमें भी जरा नहीं देर लगाऊंगी, जरा नहीं सोचूंगी। क्या ऐसा जज्बा होता है? तो अल्लाह ताला को आप गोश्त थोड़ी पहुंचा रहे हैं वहां पे, या उसको कोई जरूरत है आपसे गोश्तों की और इसकी, खून की? इसीलिए कुर्बानी खुशी से करनी चाहिए, मुसीबत के मारे नहीं। और अगर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता तो उसको चाहिए सदका खैरात जरूर कर दे, कुछ ना कुछ जरूर निकाले, कुछ ना कुछ कुर्बानी दे। तो अल्लाह ताला के पास ये गोश्त और खून ना उसको चाहिए, ना ही उसने एक ये आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब आप कहें अब हम दुबला पतला ही जानवर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला को कौन सा इसका गोश्त पहुंचना है, कौन सा इसका ये पहुंचना है, नहीं बात ये नहीं है। वो भी एक अल्लाह ताला देखते हैं कि ये मेरे रास्ते में खर्च करना जब चाहता है तो उस वक्त कैसा खर्च करता है। वो एक इबादत का तरीका है, वो एक सिंबल है कि कितना कुछ आप कुर्बानी दे सकते हो, कितना अच्छा आप उसके लिए निकाल सकते हो। अपने लिए तो सारा वक्त ही अच्छा अच्छा पे ही होता है कि बेस्ट मिले, उसके लिए कितना बेस्ट निकालते हो। तो इंसान ये बता रहा होता है, अपने दिली जज्बात बताता है असल में कुर्बानी करके, कि इस जानवर को तो तेरे रास्ते में दिया है, अगर कल को या अल्लाह मेरी जरूरत भी पड़ी तो मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक भी तेरे रास्ते में दे दूंगी। तो यही वो फिर कुर्बानी है जिससे रब राजी होता है। हदीस में भी है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, ना वो तुम्हारी सूरतों की तरफ देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। तुम्हारे दिल कैसे हैं, किस दिल से तुम कर रहे हो क्या काम। कदालिका सखरहा लकुम, इसी तरह उसने मुसख्खर किया इसको तुम्हारे लिए, किसको, इन जानवरों को, कि तुम इनसे चाहे दूध लो, चाहे इनसे इनके बाल काटो, चाहे इनकी ऊन ले लो, कितना कुछ इससे फायदा उठाते हैं ना। अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया इनको तुम्हारे लिए, क्यों, ताकि तुम उसकी तकबीर बयान करो, उसकी बड़ाई बयान करो, जिसने तुम्हें ये अलामा हदाकुम, जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया, जिसने तुम्हें ये हिदायत दी, जिसने तुम्हें ये तरीके सिखाए। फिर क्या करना चाहिए, फिर कुर्बानी किसी और के नाम की नहीं करनी चाहिए, ना किसी दिखावे के लिए, ना किसी और के नाम की, बल्कि फिर उसी की करो जिसने तुम्हें इसकी हिदायत दी। वबशिरिल मुहसिनीन, और बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो ऐसे मुहसिनीन को, ऐसों को ही खुशखबरी मिलेगी जो जानवर ज़िबा करते वक्त भी अच्छा तरीका करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और फिर उसका नाम लेकर कुर्बानी करते हैं। और फिर मोहसिन कौन होता है, जिसका हर अमल जो है आसान तरीके से किया गया हो। मोहसिन वो है कि जिसको कोई हक से महरूम भी रखे तो वो हक अदा करे, मुखबित ही मोहसिन हो सकता है ना। फिर अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए, मोहसिनीन में, और सही कुर्बानी की रूह को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब तिलावत सुनते हैं।
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين